ओम शांति। आज हमें जो मुरली मिली है रूहानी ड्रिल, वो है 16 मार्च 1986 की मुरली है। 16 मार्च 1986 की मुरली है, जिसका टॉपिक है रूहानी ड्रिल। 7 पॉइंट जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए पहले मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, उसके बाद मैं शुरू करूंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना उनको वस्त्र तू, जो तुझसे विकारों की बेड़ियां लिपटी है उसको तू वस्त्र ना समझ, तो जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना उनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू चल, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं जो ले परीक्षा तेरी, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू जोश की मशाल है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। प्योरिटी के लिए लास्ट लाइन है कि चुनर उड़ा के ध्वज बना ये गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना ये गगन भी कप कपाएगा, गर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो अब हमारे जो रूहानी ड्रिल पर मुरली है, हाँ वो तो अच्छा रहता है क्योंकि कविताओं का मुझे बहुत शौक है, इसलिए चलिए। तो रूहानी ड्रिल, बाप दादा ने रूह से उस परम रूह तक की जो यात्रा है उसके लिए बाबा ने हमें रूहानी ड्रिल्स बताई हैं। तो इस मुरली में बाबा ने शुरुआत में लाइन बहुत अच्छी कही है कि आवाज से परे ले जाने वाले बाप दादा हम बच्चों से बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं उसके लिए बाबा ने हमें 7 अभ्यास इस मुरली में बताए हैं जो हमने निकाले हैं। फर्स्ट अभ्यास है अनादि अविनाशी स्वरूप का अभ्यास करना। तो बाबा ने कहा बच्चे अनादि अविनाशी स्वरूप आपका क्या है? साइलेंस। क्योंकि आप साइलेंस होम के रहने वाले हो, वहां पर कैसा साइलेंस है? स्वीट। तो आप स्वीट साइलेंस में स्थित रहने वाले हो। बाबा ने कहा बच्चे 84 जन्म जो हैं वो आपके आवाज में गए हैं, इसलिए आपको आवाज में रहने की ज्यादा आदत है, लेकिन अब जो समय है उसमें आपको अपने साइलेंस की स्थिति में स्थित होना है। बाबा ने कहा इसका अभ्यास कैसे करेंगे आप, कैसे साइलेंस में स्थित हो सकते हैं? तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति या साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना और 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति से बाहर आ जाना। बाबा ने पूछा बच्चे इसकी प्रैक्टिस कितनी है आपको? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित रह सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो पर आपको हलचल की स्थिति में नहीं आना है, आपका अनादि अविनाशी जो संस्कार है वो स्वीट साइलेंस है और आदि स्वरूप जो है आपका वो आवाज में आने का है। आप ज्यादा आवाज में रहे हो लेकिन अब आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है स्वीट साइलेंस में स्थित होने की। तो ये हमारा पहला पॉइंट था अविनाशी, अनादि अविनाशी स्थिति में स्थित होना। हमारा सेकंड पॉइंट है कर्मेंद्रिय जीत बनने की प्रैक्टिस करना या उसका अभ्यास करना। तो बाबा ने कहा बच्चे आप कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनोगे? ऐसा तो नहीं है कि आप आवाज में नहीं आना चाहते, लेकिन इस मुख का आवाज आपको अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता? अगर आकर्षित करता है तो आप कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे अब आदि मध्य अंत सारा पाठ खत्म होकर अंतिम समय चल रहा है, तो जिसमें आपको क्या करना है, स्वराज अधिकारी बनना है और अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो यह हमारा सेकंड अभ्यास था कि हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा जैसे बच्चे वर्तमान समय प्रमाण जो भी सर्व बीमारियां होती उसका इलाज डॉक्टर क्या बताते हैं? एक्सरसाइज बताते हैं। लेकिन चूंकि आत्मा बीमार है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए हमें रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करना पड़ेगा। बाबा ने कहा चारों ओर का वातावरण कैसा भी हो, चारों तरफ परिस्थिति कैसी हो, हलचल वाली हो, लेकिन उस हलचल की स्थिति में आपको अचल रहना है तो उसके लिए आपको रूहानी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बार बार करनी है। बाबा ने कहा कि शांति का वातावरण है, उसमें शांति में स्थित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां अशांति का वातावरण है, आवाज की दुनिया है, उससे आवाज से परे जाने, इसमें ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार रूहानी ड्रिल करनी है और रूहानी एक्सरसाइज करनी है। तो ये हमारा थर्ड अभ्यास था, रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करना। फोर्थ है, बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर का आपको अभ्यास करना है, क्योंकि फाइनल पेपर जो होगा, बाबा ने कहा, वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड का होगा, कुछ सेकंड और कुछ मिनटों में वो लास्ट पेपर होगा। तो सेकंड, ये इतने में एक सेकंड गुजर गया, बाबा ने कहा बस इतने सेकंड में आपको आपका पेपर पास करना है। कैसी भी स्थिति हो, बाबा ने कहा कि क्वेश्चन भी आपको पता है, क्वेश्चन का समय भी आपको पता है। और बाबा ने कहा यदि क्वेश्चन पहले से बता दिया जाता है तो उसकी तैयारी तो अच्छे से की जाती है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो फिर सारे बच्चों को पास हो जाना चाहिए। पर सारे बच्चे पास नहीं हो रहे, क्यों? तो बाबा ने कहा अभ्यास की कमी। यदि अभ्यास अच्छा नहीं है तो आप फाइनल रिजल्ट में पास नहीं हो सकते। बाबा ने कहा आपको बहुत ज्यादा समय हलचल की स्थिति में रहने का अभ्यास है, अब अचल बनने की स्थिति का अभ्यास करने के लिए आपको बार बार ये रूहानी ड्रिल्स करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। क्या था फोर्थ पॉइंट? हाँ, फाइनल पेपर का अभ्यास करना। नहीं, मैं इसलिए पूछा कि सब सो गए शायद पीछे, फिर है आगे। फिफ्थ नंबर का है कि नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप का अभ्यास करना है। बाबा ने यहां बहुत अच्छी बात कही कि नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की स्थिति के अभ्यास में, अभ्यास के कारण ही बाबा ने कहा कि अष्ट रत्नों की माला जो है वो इतनी विशेष छोटी बनी है। यदि अभ्यास अच्छा हो तो बाबा ने कहा अष्ट रत्नों की माला बड़ी बनती, पर नहीं, इस अभ्यास में जिसने इस अभ्यास को ज्यादा किया है। फिर बाबा ने कहा आपकी देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, स्वभाव, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, वाइब्रेशन, वातावरण, प्रकृति, हलचल, कुछ भी आपके सामने हो, लेकिन यदि आप उसमें अचल रहते हो तो इस स्थिति को, इस अवस्था को कहा जाता है नष्टो मोहा समर्थ स्थिति। और आपको बाबा ने कहा इसमें बार बार टिकना हो, चाहे आपकी कमजोरियों के संस्कार हो, बाबा ने कहा, चाहे चारों तरफ के वातावरण की हलचल हो, लेकिन इन चारों, इन सभी के बीच में आपको अपनी अचल स्थिति बनाकर चलना है। फिर बाबा ने कहा कि आपकी ये सारी प्रैक्टिस देखकर, सारा अभ्यास देखकर, बाबा आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं, ताकि आपके अंदर यदि कोई कमी कमजोरी है तो आप उनको भर सको, आपके पास चांस है। बाबा ने कहा आपका पूरा हिसाब किताब निकालकर मैंने आपको बताया है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया है जिसमें आप अपनी कमी कमजोरी को भर सकते हो। लेकिन भरने के लिए आपको क्या करना है? क्या करना है? अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। सिक्स्थ पॉइंट है कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना है। कौन सी स्थिति? कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा बच्चे लास्ट समय की घंटी बजे और फिर आप उस वक्त तैयार होने जाओ, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए आपको बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा कि एक सीन दिखा रहे हैं बाबा यहां पर कि प्रकृति में जितनी शक्ति है, मतलब बाबा ने कहा कि बच्चे आपके ऊपर चारों तरफ से वार होगा लास्ट पेपर के समय। एक प्रकृति में जितनी शक्ति है, उसके बाद में माया में जितनी शक्ति है, वो पूरी शक्ति आपके ऊपर लगाएगी, फुल फोर्स से आपके ऊपर अटैक करेगी, आपके ऊपर पूरा लास्ट दाव लगाने की कोशिश करेगी। दोनों तरफ बाबा ने कहा बहुत पावरफुल सीन होगी जो देखने लायक होगी। बाबा ने कहा इधर से भी फोर्स होगा आपकी तरफ से भी, उधर से भी फोर्स होगा, माया भी लास्ट ट्रायल लेगी, लेकिन माया का लास्ट ट्रायल होगा, लेकिन आप जो रहेंगे वो कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति में स्थित रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि विजय जो होगी वो एक सेकंड की होगी, तो एक सेकंड की विजय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने कहा बार बार आपको कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति का प्रैक्टिस करना है। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, विजय आपकी होनी है, लेकिन बाबा ने कहा जब तक आप कर्मातीत स्थिति में स्थित नहीं होंगे, कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप पास नहीं हो सकते। बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनने का आधार भी कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अभ्यास है। तो ये हमारे कितने अभ्यास हो गए? सिक्स, हाँ छह हो गया। लास्ट है सेवंथ, तीव्र पुरुषार्थ और फुल अटेंशन का अभ्यास करना। बाबा ने कहा यह सबसे महत्वपूर्ण, जितने अभ्यास किए हैं उन सब का यदि आधार कुछ है तो वो है तीव्र पुरुषार्थ करना और अपने ऊपर फुल अटेंशन रखना। तो बाबा ने कहा यदि आप फुल अटेंशन रखते हो तो आप क्या हो जाओगे, पास विद ऑनर बन जाओगे। फिर बाबा ने एक लास्ट लाइन कही है कि बच्चे आप अपने आप को इतना साधारण क्यों समझते हो कि हम तो बहुत साधारण हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, आप विशेष हो, महावीर हो, महारथी हो। और एक लास्ट लाइन बाबा ने बहुत अच्छी कही है कि बच्चे यदि आप विशेष नहीं होते तो बाप दादा तक आप पहुंच नहीं सकते हो। यदि आप बाप दादा तक पहुंच गए हो इसका मतलब है कि आप विशेष आत्मा हो। एंड लास्ट, एक बार मैंने खुद से पूछा अब बता कितने पल तुझ में हैं। एक बार मैंने खुद से पूछा अब बता कितने पल तुझ में हैं। अंतर ने आवाज लगाई, रुक बैठ जरा सोच, आवाज से परे आवाज से दूर तू जितना चला बस उतने ही पल तुझ में हैं। इसका मीनिंग है कि हम आत्मिक स्थिति में टिककर जितना समय रहते हैं वो हमारे पल है, बाकी तो हमने जीवन को व्यर्थ ही गवाया। ओम शांति।
ओम शांति। 7 मिनट में 7 पॉइंट, इसमें हम चर्चा करेंगे 19/12/83 की अव्यक्तवाणी, जिसका सार है परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट है 3 प्रकार के स्नेही बच्चे। तो सबसे पहले बाबा स्टार्टिंग में मुरली के स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि स्नेही यानी बच्चे को देख रहे कि बच्चे कैसे हैं। तो वो स्नेही बच्चे को देख रहे हैं तो उसमें बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे देखे। तो उसमें पहला है यानी स्नेह करने वाले। तो ये बच्चे क्या करते, बाबा से 100% स्नेह करते हैं, भला ही वो स्वयं से स्नेह नहीं रहता उनका, दूसरे से भी नहीं करेंगे लेकिन बाबा को 100% स्नेह करते हैं। दूसरे है स्नेह निभाने वाले, यानी स्नेह भी करते हैं और निभाना भी आता है उनको। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो मुझे स्नेह स्वरूप बन यानी स्नेह रूपी बाप के बाप में समाये हुए होते हैं। तो यह है 3 प्रकार के बच्चे यानी वो बाबा ने देखी है। अभी दूसरा पॉइंट है यानी प्यार। प्यार किसको कहते, यानी बाबा ने प्यार की भाषा में बताया कि परमात्म प्यार क्या है। तो परमात्म प्यार जो है वो क्या है, यानी हमारे समर्पण भाव का अनुभव कराता है, समर्पण भाव का। और समर्पण भाव है परमात्मा के समीप लाता है। और परमात्म प्यार यानी सर्व खजाने की चाबी है और उससे अधिकारी भी बन जाते हैं हम परमात्म प्यार से। और जो देहधारियों का प्यार है वो क्या है, यानी देहधारी का प्यार क्या करता है, यानी राज्य भाग्य गवाते हैं। जो भी इतिहास में देखा जाए राजा लोग है उन्होंने देहधारियों से प्यार किया तो क्या हुआ, उसने अपने राज्य भाग्य गवा दिया। लेकिन परमात्म प्यार क्या करता है, खोया हुआ राज्य भाग्य फिर से प्राप्त कराता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप प्यार के प्यासे नहीं बनो, तो प्यार के क्या बनो, पात्र बनो। और पात्र बच्चे क्या बन जाते हैं, सुपात्र बन जाते हैं। तो इसमें हम 5 पॉइंट निकाले हैं। पहला वो 3 स्नेही बच्चे वाला हो गया और दूसरा पॉइंट है ये परमात्म प्यार में यानी परमात्म प्यार क्या है। तो उसमें हमने दूसरा पॉइंट निकाला है कि परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है। तो दुनिया में देखा जाए तो संसार में ऐसे 2 ही पात्र है कि ये निस्वार्थ प्यार करते हैं। तो कौन से 2 पात्र है, एक है बाबा और दूसरा क्योंकि भगवान का निस्वार्थ प्यार और दूसरी लौकिक माँ। ये मैंने अपने मनन चिंतन से निकाला है क्योंकि जो माँ होती है उसका भी अपने बच्चे प्रति क्या निस्वार्थ प्यार रहता है। क्योंकि वो किसी भी हालत में यदि बच्चा बीमार है और वो बीमार से तड़प रहा है तो वो माता कभी भी चैन से सो नहीं सकती, यानी माँ का एक निस्वार्थ प्यार होता है। तो बाबा भी हम बच्चों के प्रति उनका बहुत निस्वार्थ प्यार रहते, हमारे प्यार की खातिर बाबा क्या करते परमधाम छोड़ के साकार वतन में आते हैं और हमें प्यार से इतने भरपूर करते हैं कि जिसके आधार से हम क्या होते मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और जो मनुष्य से देवता बनने के इसके आधार से हमें सतयुग में हम सुख शांतिमय जीवन जीती है। तो बाबा कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते कि हमारे लिए इतना करते बाबा, लेकिन बाबा की कुछ भी कामना नहीं, इतना प्यार करते भी बाबा बच्चों से कुछ रिटर्न में कुछ चाहिए इसकी कामना नहीं करते। और दूसरा पॉइंट है परमात्म प्यार श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। यदि हमारे जीवन में परमात्म प्यार नहीं रहता तो हमारा जीवन क्या होता, एक नीरस सूखे गन्ने की तरह होता, यानी कोई सार नहीं रहता हमारे जीवन में। इसलिए बाबा ही कहते हैं कि तुम ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ती हम तो क्या होता है, बहुत सारी समस्या आती, विघ्न आती माया की, तो भी परमात्म प्यार से क्या होती है, सब वो पार हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि परमात्म प्यार हमारे जन्म जन्म की फुकार का प्रत्यक्ष क्या है, फल है। क्योंकि दुनिया में देखो जाए तो परमात्म प्यार किसको फुकट में नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए देखा तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। आज राजा होने क्या किया, अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए, बहुत उन्होंने तपस्या की तो भी उनको मिला नहीं। ऋषि मुनि ने क्या किया, प्रकृति के सान्निध्य में गए और गहन तपस्या की तो भी उनको नहीं मिला। भक्त लोगों ने क्या किया, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना की, हाँ मूर्ति के आगे टेक टेक के वो टिप्पर भी घिस गए, तीर्थ यात्रा करते करते उसके पाँव में छाले पड़ गए तो भी उनको परमात्म प्यार नहीं मिला। नहीं, उनको भक्तों को क्या मिला, मगर हमें देखो बाबा ने जो प्यार दिया वो भी हमें फुकट में नहीं दिया है, क्योंकि हमने क्या किया, जन्म जन्म उसको फुकारा है। क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में तो हम सुखी थे, उसमें कोई किसको फुकारने की जरूरत नहीं थी। जैसे हम द्वापर युग में गए तो द्वापर युग में क्या हुआ, हम देह भान में आ गए, देह भान में आने के कारण हम दुखी और अशांत बन गए, और दुखी अशांत होने के कारण भगवान को फुकारने लगे। द्वापर युग से कलयुग के अंत तक हमने भगवान को फुकारा, तो हमारी फुकार जी, हाँ तो हमारी फुकार सुन करके भगवान इस धरती पर आ गए और हमें प्यार से भरपूर कर दिया। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा है कि परमात्म प्यार क्या करता है, सभी मेहनत से छुड़ा करके एक योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। क्योंकि योग युक्त स्थिति यानी बहुत ऊंची स्थिति है, वो सभी को साध्य नहीं होती, क्योंकि दुनिया के लोग भी वो बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन परमात्मा प्यार से हमें वो सहज होगी। और पांचवा पॉइंट है कि परमात्म प्यार तीनों मंजिल को पार कराता है। तो कौन सी तीन मंजिल, एक देह भान से बाबा हमें आत्मस्मृति दिलाता है प्यार से, दूसरा देह के संबंध से क्या होता है, हमें बाबा के तरफ अपना सब संबंध जुड़वाता है, और देह के पदार्थ से आकर्षण से मुक्त करा के एक बाबा की तरफ अपना आकर्षित करती है। तो ये हो गए पांचवा पॉइंट। यानी अभी पहला तीन बच्चे वाला और पांच, यानी ऐसे छह पॉइंट हो गए, और लास्ट है सातवा कि क्या छोड़ा है और क्या पाया है। तो बाबा ही बच्चे, कोई कोई लाडले बच्चे बाबा से ऐसे फरियाद करते हैं कि बाबा हमने इतना सब कुछ त्याग किया, इतना छोड़ा, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला। तो ऐसे बच्चों की लाड प्यार बात सुनकर बाबा उनको मुस्कुराते हुए कहते कि मेरे लाडले बच्चों, आप देखो कि आपने किन किन बातों का त्याग किया और आपका भाग्य कितना बना, इसकी लिस्ट निकालो और चेक करो कि किसका पलड़ा भारी है, एक तो त्याग का या भाग्य का। तो उसमें बाबा ने कहा कि आपने त्याग भी किया तो क्या त्याग किया, किसका त्याग किया, जो भी अनेक चत्या वाला वस्त्र उसका त्याग किया, और जो जड़ झड़ी भूत शरीर अंतिम जन्म का, जो चलाने में आपको ही मुश्किल होता था ये सारा शरीर मुझे त्याग किया आपने, और उसके बदले में क्या मिला आपको। नहीं, बाबा बच्चे को कह रहे, हाँ बाबा बच्चे को कह रहे कि आपने दिया, बच्चों ने मुझे दिया, बाबा के ऊपर अर्पण किया, त्याग किया, मगर उसके बदले में मैंने क्या दिया, यानी एक आपको क्या मिला, मुझे बच्चों को कि फरिश्ता स्वरूप मिला, फरिश्ता स्वरूप लाइट आकार मिल गया, जिसको कोई व्याधि भी नहीं और किसी शरीर का यानी देह का कोई रिश्ता भी नहीं उनका, और एक भी पुराने स्वभाव संस्कार का अंश मात्र भी नहीं, और बुद्धि की भटकन भी नहीं और मन की हलचल भी नहीं, ऐसा यानी फरिश्ता स्वरूप दिया बोलते बाबा। और दूसरी बात बाबा बता रहे कि आपने दिया तो दूसरा क्या दिया, एक स्वार्थ का संबंध वाला, जो स्वार्थ का संबंध है उसका त्याग किया, तो उसमें भी आपको वो स्वार्थ संबंध से दुख ही मिला, क्योंकि उस स्वार्थ संबंध ने आपका चयन और सुख छीन लिया बोलते, अभी अभी उनके बाबा ने बताया कि आप अभी अभी यानी भाई स्वार्थ संबंध में क्या होता है, अभी भी भाई और अभी भी दुश्मन बन जाती है, यानी लास्ट में क्या मिलता है उससे, यानी धोखा और दुख ही मिलता है। तो ये सब धोखा और दुख वाला संबंध बाबा बोलते आप लोगों ने त्याग किया और उसके बदले में क्या मिल गया, यानी सब संबंध बाबा के साथ जोड़े तो बाबा के संबंध जोड़ा बोलते ये क्या। और तीसरी बात बाबा बता रहे कि जो देह का पदार्थ विनाशी देह का पदार्थ है, जो जिसको कहते हैं कि विष भरा पदार्थ है, वो उसे विष भरे पदार्थ को यानी उससे क्या मिला, यानी मेरा कहकर यानी मेरे के जाल में फंसा दिया उस पदार्थ ने। तो ऐसे पदार्थ को आपने भोग भोग के क्या बन गए, पिंजड़े के पंछी बन गए बोलती। तो ऐसे पिंजड़े के पंछी यानी कखपन आ गया, इस कखपन से बाबा बोलते कखपन दिया और उसके बदले क्या दिया, पदम दिया, तो कखपन के बदले पदम मिल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपने त्याग कितना किया और आपका भाग्य कितना बना। तो ऐसे 7 पॉइंट ओम शांति। काला धन का नहीं इसमें, इतना पूरी मुरली होगी रिवाइज इसमें।
ओम शांति। मुरली का डेट है 4 दिसंबर 1985। टाइटल है संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा। इसमें बाबा ने संकल्प की भाषा के बारे में बोला, उसका डेफिनेशन बताया है, उसके कितने प्रकार है वो बताया है, उसमें विघन क्या आता है वो भी बताया है। तो मुरली का पहला पॉइंट है बाप दादा के सामने डबल रूप में डबल सभा लगी हुई है और दोनों सभाई स्नेही है। पहला सभा है साकार रूपधारी बच्चों की सभा, दूसरी सभा है आकारी स्नेही स्वरूप में सभा। तो सभी रूह रिहान कर रहे थे, तो बाबा ने रूह रिहान सुन रहे थे संकल्प की भाषा द्वारा। तो बाबा ने कहा है मुख की भाषा तो संकल्प की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है, ये सिर्फ रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही समझ सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। बाबा ने कहा जितना जितना अंतर्मुखी बनते जाएंगे, स्वीट साइलेंस में चलते जाएंगे, उतना उतना ये सारे भाषा अनुभव होते जाएगा। तो वो 3 प्रकार की भाषा जो है वो है, एक नैन की भाषा, दूसरा है अनुभव भावना की भाषा और तीसरा है संकल्प की भाषा। तो दूसरा पॉइंट है नैन की भाषा है इशारा की भाषा, भावना की भाषा है जो चेहरे पर प्रकाशित होते हैं, उस भाषा से ये पता चल जाता है कौन किस भावना से हमारे सामने आते हैं। कोई स्नेह के रूप में आते हैं, कोई दुश्मनी के रूप में आते हैं, या कोई स्वार्थ के लिए आते हैं, वो पता चल जाता है। जैसे मम्मा के सामने भी कोई जैसे गुस्से में भी आते हैं तो मम्मा के आगे आके वो शांत हो जाते थे। तो अगला है संकल्प की भाषा। संकल्प की भाषा सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ये भाषा सबसे शक्तिशाली है और श्रेष्ठ, उसमें श्रेष्ठ शक्ति और मूल शक्ति है। तो बाबा ने कहा है उस भाषा ये सबसे तीव्र गति से हम किसी को मैसेज दे सकते हैं बिना साधन के, पर इसके लिए हमारी बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। और वो क्लीन होने का तरीका क्या है, उसमें हमें एक बाप में और उनके दिए हुए नॉलेज में, और उनके नॉलेज द्वारा सेवा में बिजी रहना, रहने का अभ्यासी बनना है। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टर्बेंस बनते हैं यहां पे। तो बाबा ने कहा जो भी व्यर्थ संकल्प है उसको समर्थ में बदल दो, तो धीरे धीरे श्रेष्ठ संकल्प आने लग जाएगा, और फिर ये संकल्प की भाषा का अभ्यासी बन जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है अंतर्मुखी आत्माओं का भाषा संकल्प की भाषा है। इसमें मेहनत भी कम है, समय भी कम है, कम लगता है, और सहज सफलता मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है बाबा ने वाणी से परे जाने के लिए कहा है। जैसे जैसे दूसरी जिम्मेवारी उठाते जाएंगे, तो बाबा ने कहा है कि आप वानप्रस्थी होकर दूसरे को वानप्रस्थ में ले जाएंगे। अभी तो बाबा ने कहा है कि आप लोगों को स्टेज बनानी पड़ती है, पर बाद में बनी बनाई मिलेगी। तो जैसे स्वर्ग में बनी बनाए मिलते हैं, सिर्फ कहना होता है कि हजूर चलिए, हजूर बैठी है, वैसे सेवा के प्राप्ति स्वरूप में बनी बनाई स्टेज मिलेगी। अगला पॉइंट है संकल्प किया और प्रैक्टिकल में हुआ। तो बाबा ने कहा है कि किसी ने संकल्प किया और उसको सुना और कर्म का निमित्त बना, तो ये हाजी कर लिया ना, उससे क्या है धीरे धीरे आप हल्के होते जाएंगे, और जब हल्के होंगे तो उड़ते जाएंगे और सेवा में इधर उधर उड़ते जाएंगे। जैसे एक पंछी एक डाली को छोड़ के दूसरी डाली में बैठते हैं, तो जिस डाली में बैठते वही अपना घर बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा इसका भी अभ्यासी बनो और हमेशा एवर रेडी रहो, उसमें क्यों क्या नहीं करो। पॉइंट नंबर सिक्स है पार्टियों के साथ मुलाकात। उसमें बाबा ने कहा है सुनना और करना समान है। बाबा ने पूछा सुनते क्यों हो, कुछ करने के लिए तो? तो बाबा ने कहा सुनना और करना जब समान हो जाएगा तब संपन्न बन जाएंगे। उसमें बाबा ने पूछा है कि इसमें पहले नंबर कौन आएगा, क्या आप सब मैं बनूंगा बोल सकते हो? बाबा ने यह भी कहा इसमें ओटे सो अर्जुन है, जो पहले निमित्त बनेगा वो अर्जुन है, तो वो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है। तो लास्ट पॉइंट है बाबा ने इसमें एक प्रश्न पूछा है बाप के समीप जाने के लिए क्या आधार है, तो उसका उत्तर है विशेषताएं। बाबा ने कहा विशेषताओं द्वारा बाप के समीप जा सकते हैं, तो जो भी विशेषताएं है उस विशेषता को सेवा में लगाने के लिए कहा है, और जितना सेवा में लगाएंगे उतना उसका वृद्धि होते जाएगा। तो बाबा ने कहा है कि जितना भी विशेषताएं बाबा ने भरे हैं उसको सेवा में लगाओ, और जो भी अनुभव होता है वो अपने तक सीमित मत रखो, दूसरों को सुनाओ तो उमंग उत्साह बढ़ेगा। आखिर में बाबा ने कहा है कि जो भी विशेषताएं हैं वो बाबा देख के उसको उन बच्चों को उसी विशेषता में सेवा में लगाते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। हमें जो मुरली मिली है वो 29 अक्टूबर 1999 और उसका टाइटल है समय का पुकार दाता बनो। उसमें सबसे बाबा मुलाकात करते हैं और हमने ये भी देखा है कि बाबा जब अव्यक्तवाणी चलाते हैं तभी जितने भी सन्मुख बैठते हैं, चाहे कहीं भी होते हैं, देश विदेश में होते हैं, तो जहाँ भी होते हैं वहाँ उस समय, चाहे उसमें उसका कितना भी टाइम हो, लेकिन वो उस सन्मुख बैठते हैं, कोई कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, ऐसे सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस समय बहुत हर्ष होता है, बाबा को भी इतना हर्ष होता है, बच्चों को भी हर्ष होता है। तो सबसे पहली पॉइंट है कि दिल का सच्चा सदा का हर्ष, दिल का सच्चा सदा का हर्ष। तो बाबा को तो हर्ष होता ही है, लेकिन बच्चों को कभी हर्ष होता है कभी नहीं होता है। तो सदा का हर्ष होता है तो सारी दुनिया के दुख दूर कर देते हैं। तो सदा का हर्ष सारी दुनिया का दुख दूर करने वाला है, पहली पॉइंट है। दूसरी है कि बाप को सभी आत्माएं प्रिय है और सभी आत्माओं की सेवा करने के लिए आए हैं। तो जैसे बाप वैसे बच्चे हैं, बच्चे भी निरंतर सेवाधारी है। और जब हमने ब्राह्मण जन्म लिया है तो ब्राह्मण जन्म लिया ही है सेवा और याद के लिए। तो हम अपने को देखें कि जैसे निरंतर सेवा, मनसा वाचा और सबन संपर्क में सेवा, तो हमारा निरंतर कितना रहता है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों स्टेज पर पार्ट बजाते हैं, वैसे हम जो निरंतर सेवा करते हैं उस निरंतर सेवा हमारी कितनी है, यह दूसरा पॉइंट। तीसरा है कि कर्मयोगी, बाबा ने कर्मयोगी की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। कर्म करते करते योग हो तो मालूम है, लेकिन सेवा और योग, जितनी हम सेवा करते हैं उसमें हम कितना बाबा को याद करते हैं। कई बार हमारी सेवा का घंटा ज़्यादा हो जाता है और याद का घंटा कम होता है, तो बैलेंस नहीं होता है। तो बैलेंस माना ऐसा नहीं कि चार घंटा याद तो चार घंटा सेवा नहीं, लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे हम जो सेवा करते हैं उसमें भी याद उतनी ही होनी चाहिए। दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग माना कि जो सुबह से उठते हैं उसमें जो भी रात तक हमारी जो सेवा होती है या हम कर्म करते हैं, जैसे खाना पीना जो भी करते हैं उसमें उसकी याद, उसका बैलेंस, उसको कहते कर्मयोगी। तीसरी पॉइंट है योग, याद अर्थात, ऐसे याद का तो बहुत सारी डेफिनेशन बाबा ने दिया है, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा है याद माना स्वमान। अगर हमें स्वमान ही नहीं है तो हमारी पावरफुल याद नहीं रहती है। तो स्वमान बाबा ने बहुत टाइटल दिया है हमको, बहुत स्वमान दिया है। तो स्वमान की जितनी याद है, वो स्वमान में रहते हुए बाबा को हम जब याद करते हैं तो हमारी याद पावरफुल होती है। ऐसे ही हम बैठ जाते हैं तो हमारी याद पावरफुल नहीं होती है। तो सबसे बड़े से बड़ा स्वमान है बाप समान बनना, बहुत बड़े से बड़ा स्वमान है। चौथी पॉइंट है कि जो मुलाकात थी वो विदेशियों के लिए, बाबा मतलब वो टन ही विदेशियों का था। तो विदेशियों के टन में कौन कौन आते हैं, जो मतलब कि सारे देश के लोग भी आते हैं, उसमें इंडियंस कम होते हैं लेकिन विदेशी लोग बहुत होते हैं। तो बाबा ने उसको एक टॉपिक दिया था, कॉल ऑफ टाइम, समय का पुकार दाता बनो। समय की पुकार दाता बनो। तो बाबा ने कहा कि ये जो टॉपिक है उसमें तो देश विदेश के सेवा बहुत करने वाले भी आए थे। तो बाबा ने कहा कि स्वयं प्रति क्या है, तो दाता की भावना है स्वयं प्रति इमर्ज करो, और दूसरा सर्व के प्रति स्नेह की भावना इमर्ज हो। क्योंकि जब भी हमारे कोई तकलीफ होती है, कोई तकलीफ देता है, तो हम उसको इतना प्यार नहीं करते हैं। तो जब भी बाबा कहते हैं कि सहयोग, और हमको सहयोग देना है, उसमें भी हम देखते हैं कि इसने हमको ये किया था तो हम सहयोग नहीं देंगे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, सर्व के प्रति हमारा स्नेह इतना ही इमर्ज हो कि वो कुछ भी दे, जैसे बाबा कैसे हैं, सब कुछ देता ही रहता है। हम उसको क्या देते हैं, कफन देते हैं, फिर भी बाबा हमारा वो लेकर के हमको लक्पन देते हैं, हमको पद्मा पद्म पति बनाते हैं। तो हमें भी अगर कोई हमको गालियां भी देते हैं, अगर कुछ इंसल्ट भी करते हैं तो बाबा कहते हैं कि उसके बदले भी हमारी इसके प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। उसके लिए क्या चाहिए? दातापन का लक्षण चाहिए। दातापन माना रहम भाव होना चाहिए। दातापन माना संपूर्ण भंडार भरपूर नहीं होता तो हम दातापन नहीं हो सकते, हम दाता नहीं बन सकते हैं, तो हमारा भंडार भरपूर होना चाहिए। दूसरा है कि रहम भाव, अगर रहम भाव नहीं है तो भी हम मतलब कि उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। फिर वर्तमान समय में विशेष जो आए थे विदेशी लोग, बाबा विदेशी लोगों की एक विशेषता देखते हैं और विशेषता है कि उसकी सच्ची दिल होती है, सच्चाई सफाई होती है। यहाँ बहुत समय से चलते होते हैं उनके, उनको भी कभी बाबा मजबूरी से चलते हैं लेकिन वो मजबूरी से नहीं चलते हैं। अगर उसको चलना होगा तो कुछ भी हो जाए लेकिन वो चलेंगे, मजबूती से चलते हैं। अगर वो नहीं चलना है तो नहीं चलेंगे। तो उनकी सच्चाई और सफाई होती है, जो भी कार्य करते हैं वो सच्चाई सफाई से करते हैं। तो बाबा को सच्चाई सफाई भी उनकी विशेषता बहुत अच्छी लगी। वर्तमान समय का एक लक्ष्य बाबा ने दिया, अटेंशन देना है, लक्ष्य और लक्षण। लक्ष्य माना क्या? बाबा ने हमें, जब हमें ज्ञान मिलता है तभी हमको बहुत बड़ा लक्ष्य देते हैं कि हमको बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, देवी देवता बनना है, तो ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन लक्षण, लक्षण हमारा अगर हम रोज रोज देखें कि लक्ष्य को सामने रखते हैं हमारे में लक्षण कैसे कैसे आते जाते हैं, तो लक्ष्य और लक्षण का अंतर है, उसको हमें कम करना है। दूसरा है कि विदेशी जब भी आते हैं तो उसको, वहाँ विदेशों में तो हमने देखा है कि वहाँ बहुत कम लोग क्लास में आते हैं, उनका क्लास तो मतलब कि ऐसे कंप्यूटर से कैसे भी सुन लेते हैं, क्लास में कम आते हैं। लेकिन जब यहाँ विदेशी सभी आते हैं तभी उनमें सैर, सभी के प्रति जो भी सेवा करते हैं, जो भी टॉपिक होता है, जो सेवा करते हैं, उनका जो आइडिया होता है वो सब शेयर करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सेवा वो तो बहुत करते हैं, टॉपिक्स भी बहुत निकालते हैं और युक्तियां भी बहुत निकालते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति उसका बैलेंस होना चाहिए। सेवा करते रहो और स्व उन्नति ही नहीं हो तो भी कोई काम का नहीं है। तो स्व उन्नति और सेवा उसका बैलेंस रहना चाहिए। और लास्ट में बताया कि बाबा ने कहा साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि साधन हाथ में होता है। बाबा ने कहा कि साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ कोई साधन नहीं था और बाबा खुश भी होते हैं कि इतने साधन बच्चों के लिए, और इसलिए है कि स्व उन्नति के लिए भी है और स्व कल्याण के लिए भी है और विश्व के कल्याण के लिए बाबा ने ये समय प्रति समय साधन दिए हैं। लेकिन वो साधन रहते हुए भी कहते हैं कि जैसे संकल्प करते हैं तो बाबा के पास सब कुछ पहुंच जाता है, हमारा संकल्प बाबा के पास पहुंच जाता है। लेकिन पत्र जब उस समय लिखते थे तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन ईमेल जब आया तो बाबा बहुत खुश हो गए, वाह बच्चे वाह, आप बहुत ही आगे बढ़ रहे हो। लेकिन बाबा ने बहुत ध्यान से सावधानी से कहा कि साधन में साधना रहना चाहिए, क्योंकि साधन और साधना का बैलेंस नहीं होगा तो उन्नति हो नहीं सकेगी। तो साधन जैसे आपके हाथ में 10 मिनट में आप लेटर लिखते हो कंप्यूटर से, तो उसमें एक मिनट निकालो साधना के लिए। अगर कोई भी काम करते, एक घंटे का भी साधन उपयोग करते हो तो उसमें आप 10 मिनट निकालो। तो अगर साधन और साधना का बैलेंस होगा तो क्या होगा कि अगर ऐसे बीच बीच में टाइम निकालो, 5 सेकंड भी निकालो, 7 सेकंड भी निकालो, 1 मिनट भी निकालो, लेकिन साधनों के बीच में साधना बिल्कुल होनी चाहिए। अगर साधनों में ही आपका टाइम चला जाएगा, आप समझो बहुत सेवा कर रहे हैं, हमारे साधनों से बहुत सेवा हो रही है, विश्व का कल्याण हो रहा है, लेकिन बाबा कहते धोखा है। क्यों? क्योंकि अगर साधनों में रहेंगे तो आप में जो थकावट होंगी, आप में बहुत थकावट हो जाएगी, और थकावट को दूर करने का कारण साधना है। तो साधन और साधना का बैलेंस करना वो हमारे जीवन में उन्नति का साधन है। ओम शांति।